ఓం శాంతి. సభీ కా లక్ష్య హై బాప్ సమాన్ బన్నా. చాహే కోయి నయా హై చాహే పురాణా హో, सबका लक्ष्य एक है. नेचुरली है पुरुषार्थ, हमें उसी अनुसार करना होगा. तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होने के पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनाई और हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है. तो बाबा ने सब सब्जेक्ट्स में संपूर्णता संपन्न की. उनका हर बोल ज्ञान युक्त, सदैव योग युक्त, धारणा में डिटेल में मैं सुनाएंगी और 90+ आयु थी परंतु सदैव अथक सेवाधारी रहे. सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक सेवा चलती रही. और उन्हों का मम्मा बाबा का पुरुषार्थ तीव्र रहा. हमारे सामने कई एग्जाम्पल है, दादियां दीदियां, परंतु मम्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थे. फिर भी उन्होंने वो अवस्था बनाई अपने लक्ष्य के. तो लक्ष्य हमारा सदैव सामने हो कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. मम्मा बाबा को फॉलो करना है. और नष्ट मोहा बनना है. कोई भी जंजीर हमें खींचे नहीं. लौकिक संबंधियों से लगाव लोहे की जंजीर, अलौकिक परिवार से लगाव सोने की जंजीर, और अपनी सेवा और स्टूडेंट से लगाव हीरे की जंजीर. मेरा स्टूडेंट ये भी ना हो. तो बाबा समान बनने के लिए हमें ज्वालामुखी योग होना चाहिए. जो पीछे आते हैं मेहरबानी करके भाइयों की तरफ बैठ जाए, इधर उधर घूमे नहीं. हर्षित मुख, हर्षित मुख कौन रहता है? जो सदैव संतुष्ट है, कोई इच्छा नहीं, लोभ नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं. प्रेम स्वरूप। बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार था, बेहद का प्यार था और दृष्टि वृत्ति आत्मिक रूहानी सब मेरे बच्चे 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 करके ही बुलाते थे ब्रह्मा बाबा। हम लोगों की भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए तो छोटे बड़े चाहे लेबरर्स थे चाहे मिनिस्टर बाबा के सामने आएंगा सबके बच्चे। उनकी बुद्धि में हमेशा रहता था मैं प्रजापिता हूं और हमारी दृष्टि में यही हो कि हम आत्मा और भाई भाई की वृत्ति। लास्ट संडे या कभी बाबा की सहनशीलता का सारी मुरली थी कि कितने बाबा सहनशील रहे, कितना अपोजिशन का सामना करना पड़ा, कितने विघ्न आए, कितनी उनकी ग्लानि हुई, परंतु जैसे बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, गाली देने वाले को गले लगाओ। प्रैक्टिकल में देखा कि हर एक के प्रति शुभ भावना, कभी बाबा को क्रोध में हमने नहीं देखा, चिड़चिड़ापन नहीं, आवेश नहीं। चाहे बाबा के बच्चे भी यज्ञ छोड़ के गए, बाबा ने प्यार से छुट्टी दे दी। जो लोग हैं जब सरेंडर हुए यज्ञ में आए, कई है अपना धन जेवर सब लाए थे, जब जाना था 14 साल के बाद तो कहे बाबा हमको दो वापस, और बाबा ने दे दिया। ये नहीं कहा 14 साल तो तुमने यहाँ खाया पिया है, कपड़े मिले हैं, नहीं ले जाओ, क्योंकि बेगरी पार्ट में जाना शुरू हुआ तो बेगरी पार्ट में यज्ञ में से कई चीजें बेचती, इतने तक के रिकॉर्ड भी गीतों की जो रिकॉर्ड थी वो भी बेचनी पड़ी, परंतु बाबा ने जिन्होंने मांगा उसको दे दिया। और बाबा जानता था कि ये कुछ सही अर्थ में सरेंडर नहीं है, तो इसलिए बाबा ने उन्हों का नहीं बेचा था। बाबा की वाणी मधुर थी और बाबा कहते हैं कम बोलो धीरे बोलो सोच समझ के बोलो, मधुर और धीरे से। और बड़ी बात तो ये है कि हमें आत्माभिमानी रहना है, देह भान का अंश मात्र भी ना रहे। क्योंकि जिसको देह भान है ना आईने में दिन में 10-15 बार ही देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, कपड़े ठीक है, बाल ठीक है, आदि आदि देखते रहेंगे। और हर एक को अलग अलग को देखते रहेंगे, इन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या पहना है, कौन सा मॉडर्न फैशन है। और इतने तक कि कई बार आजकल तो वेट कम करना है इसलिए देखते रहेंगे, अपने आप को वजन करते रहेंगे। और आजकल ऑपरेशन भी होता है कि बॉडी की फैट निकाल देवे, तो देखना है कि हम किसी में अटके नहीं, लटके नहीं और चटके नहीं। अटकना नहीं, लटकना नहीं, चटकना नहीं, परेशान नहीं, शान में रहना है। और अव्यक्त फरिश्ता रूप हल्के होकर उड़ते रहें, कोई बोझा ना रखें। क्या है कि गृहस्थी लोग हैं, समझेंगे मेरी जिम्मेवारी है परिवार को देखने की। माँ बाप समझेंगे हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, तो ये भी जिम्मेवारी का बोझ हो जाता है। या विकर्मों का भी बोझ हो जाता है कि बाबा के बनने के बाद यदि हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसी को दुख देते हैं, पाप करते हैं, तो उसका भी बोझा हो सकता है। ईर्ष्या न हो, क्योंकि जब हम स्वमान में रहते हैं तो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रहती है। जब स्वमान में नहीं है ईर्ष्या होती है। और यदि रूहानी प्यार है, देखो आज माँ बाप है, अनपढ़ होंगे, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सूट वूट में घूमते होंगे, बड़ी पोजीशन पर होंगे, ईर्ष्या थोड़ी होती है। माँ बाप धोती में घूमते होंगे, तो क्या है कि जब प्यार है तो माँ बाप को शान रहती है कि मेरा बच्चा ऑफिसर है, वकील है, डॉक्टर है, आदि आदि। ईर्ष्या नहीं होती। और ड्रामा पर अडोल, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा है, और जो होगा अच्छा। तो इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, ये सूक्ष्म विकार है। अलबेलापन नहीं, जो अलबेले होते हैं ना, भूल जाएंगे, कहेंगे मैं भूल गया, और बहाने दिखाएंगे, ये काम था ना इसलिए ये काम रह गया। और अलबेले हैं समय शक्ति धन फालतू गंवाते हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारे संकल्प समय शक्ति धन कर्म बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग है, जमा करने का युग, वेस्ट करने का नहीं। जो व्यर्थ गंवाते हैं, जमा नहीं होता तो समर्थ नहीं बनते, आलस्य नहीं। जो आलसी होते हैं ना, कहेंगे मैं थक जा रहा हूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बहाने बताएंगे। और आलस्य कब है? जब उमंग उत्साह नहीं है। यदि उमंग उत्साह होता है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सेवा में उमंग उत्साह हो, कितना भी काम करेंगे थकेंगे नहीं, खेल समझेंगे। पर आलसी है वो, आराम पसंद, एक स्थान पर बैठे रहेंगे। लोभ का सूक्ष्म रूप है, ये अच्छा लगता है, हमारी ये इच्छा है, तो उनको खाना पीना घूमना पहनना, उसके प्रति आकर्षण रहती है, इच्छा रहती है। बहुत दिन हुआ पकौड़ा नहीं खाया है, भेलपुरी नहीं खाई है, समोसा नहीं खाया है, तो इच्छा रहती है। और जो नॉलेजफुल होते हैं, उनका बोलना चलना कर्म करना नॉलेज के आधार पर होता है। क्यों क्या का प्रश्न नहीं, क्यों क्यों होता है, धर्मानुसार कर्मानुसार होता है। क्या होता है जो निश्चित ड्रामा में है वो होता है, कैसे होगा ऐसे होगा। तो एक रस, अचल, अडोल और साक्षी दृष्टा, आज भी बाबा ने दो शब्द याद कराया, साथी और साक्षी। बाबा को साथी बनाना और साक्षी होके ड्रामा के खेल को देखना। और हमारी मुख्य धारणा है पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सब विकार, दसों विकार को जीतना है, और उसके सूक्ष्म रूप भी। तो काम का सूक्ष्म रूप है आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षण होता है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, आकर्षित हो जाते हैं, या नाम रूप का प्यार के व्यक्ति का नाम घड़ी घड़ी लेते रहे, ये ना, हाँ ये फलाना फलाना फलाना, सारा दिन उसी का फलाने का नाम लेंगे तो नेचुरली उसका रूप सामने आएगा। और फैमिलियरिटी, लेन देन एक व्यक्ति के साथ करेंगे। बाबा कहते हैं मैं आपका फ्रेंड हूँ, परंतु वो क्या करेंगे, व्यक्ति को फ्रेंड बनाकर सुख दुख की बात उन्हों को बताएंगे। तो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, शक्तिवान। तो विघ्न आएंगे, वो विघ्नों को विनाश करेंगे, माया जीत। और तीन तख्त पर विराजित, बाबा के दिल तख्त पर, भ्रुकुटी के तख्त पर और स्वराज्य अधिकार। और लाइट माइट और जिम्मेवारी का ताज पहनना, स्वराज्य अधिकारी का तिलक देना है। और जितना जितना हम शक्तिवान होंगे ना, हमारा सोचना बोलना करना एक हो, नहीं तो कई लोग क्या है प्लान बहुत बनाते, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, बताएंगे भी सबको ये करेंगे वो करेंगे, और करते समय कहेंगे क्या करें फलानी तकलीफ आ गई, ये हुआ वो गया, इन्होंने सहयोग नहीं दिया, हम नहीं कर पाए। हर एक के लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। आज भी बाबा ने बताया ना कि कोई कैसा भी हो, ऐसे नहीं कहो कि ये तो ऐसा ही है, पता नहीं ये सुधरेगा या नहीं, नहीं, अशुभ भावना कि हमको इनको बाबा के वर्षे के अधिकारी बनाना ही है। और आज भी बताया कि आप अवतरित हुए हो, जैसे शिव बाबा अवतरित हुआ है संसार को बदलने, आप भी अवतार हो कि आप आए हो विश्व परिवर्तन करने, विश्व का कल्याण करने, पतितों को पावन बनाने। तो हमारा ऑक्यूपेशन है तमोगुणी आत्माओं को सतोगुणी बनाना। अभी बात समान बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, तो दीदी जी के मुख्य विशेषता में आपने सुनाऊंगा, उनको लात तात लगी है, लगी थी घर जाना है, अब घर जाना है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, सतो प्रधान बनना है। और हमारा संकल्प दृढ़ हो के मुझे बाप समान बनना ही है, साधारण न हो, कोशिश करेंगे ये शब्द न बोलना। और योग द्वारा अपने में शक्तियां जमा करते रहो, गुणों का स्टॉक भरो, बाबा ही मेरा संसार है, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरा तो एक दूसरा न कोई। आत्माभिमानी ये तो सबसे पहली धारणा हो, तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि यदि दो तार को जोड़ना है तो ऊपर का रबर निकालना है, अथवा देह का भान भूलना है। और सबसे बड़ा त्याग हमारा होना चाहिए मैं और मेरा, क्योंकि ये दो बातें हमेशा हम लोगों की पक्की हो गई। सारा दिन मैं। तो यदि मेरे में विशेषता भी है ना, तो बाबा की दी हुई गिफ्ट समझो। और यदि कोई हमारी प्रशंसा करे, स्वीकार नहीं करो, मन से स्वीकार नहीं करो, तो क्या होगा? अहम नहीं आएगा, नहीं तो अहम आएगा कि मैं कितनी स्वीट हूँ, लवली हूँ, मेरा नॉलेज देना सबको बहुत पसंद आता है। क्योंकि सब लोग प्रशंसा तो करेंगे, बाबा के बच्चे स्वीट होते ही है, तो सब आकर्षित भी हो सकते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, परंतु हमें स्वीकार नहीं करनी है। और ज्वालामुखी या बीज रूप योग के लिए हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दुनियावी कोई भी आकर्षण न, घूमना फिरना खाना पीना, कि कश्मीर जाएं या लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, कोई भी इच्छा ना हो। या कईयों को इच्छा होती है हम लेटेस्ट फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट, बड़े स्क्रीन वाला, कलर स्क्रीन वाला, ये सब इच्छाएं होती हैं। और नेचुरली है, कुछ खरीदना है, सोचेंगे पैसे कैसे जमा करें आदि आदि। तो ये इच्छा ना हो, सहन शक्ति बढ़ानी है। क्योंकि मैं समझती हूँ काम विकार जितना थोड़ा सहज है, पर क्रोध वो मुश्किल है। क्या है? अहम होता है, हम माँ बाप है, बच्चों को हम जैसे कहें ऐसे करना है, जब कहें जैसा कहें ऐसा करना है, और नहीं करते तो गुस्सा आ जाता है। या जो अच्छी पोजीशन पर है, बड़ी पोजीशन पर है, तो अपने अंडर काम करने वालों से अपेक्षा रहती है कि इसी रीत से होना चाहिए, इतने टाइम में होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए आदि आदि, तो सहन नहीं कर सकते हैं। या धीरज नहीं रहती है, या रूहानी प्यार नहीं रहता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए ये देखना है कि गुस्से का अंश भी ना हो। कई बार क्या करते हैं, जिस पर गुस्सा है आंख से आंख नहीं मिलाएंगे, उसको देखकर जैसे समझेंगे देखा ही नहीं है, या वो एक तरफ से आएगा हम दूसरे तरफ से चले जाएंगे, कि सामने मिले तो ओम शांति करना पड़े ना, या हलो करना पड़े, तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। और लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पूरा वर्षा लेना है, बाप समान बनना ही है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है, और अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे नहीं कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, चलो उनकी सेवा करें, बड़े होंगे पीछे हम पूरा ब्राह्मण लाइफ फॉलो करेंगे, अमृत वेला करेंगे, हम तो गृहस्थी है ना, सोते सोते ही 11 बज जाता है, अमृत वेला कैसे उठेंगे। नहीं, समस्या आएंगे। ऐसे नहीं समझना कि बाप के बने तो कोई समस्या नहीं आएंगे, और भी आएंगे। जैसे भी हम ज्ञान में आते हैं, मित्र संबंधियों का पहले तो विरोध होता है, ये क्या हम अछूत है क्या, हमारा हाथ का क्यों नहीं खाते हैं? और पार्टनर साथ में नहीं है ज्ञान में, एक ही ज्ञान में चलने वाला है, यहाँ भी जाना है, पिक्चर में भी जाना है, शादी में भी जाना है, सब स्थान पर जाने के लिए मजबूर करेंगे, तो इसलिए समस्या आएंगे। पहले मित्र संबंधियों से आएंगे, फिर सेवा साथियों से भी आ सकती है, ब्राह्मणों से, और फाइनली अपने ही संस्कार तंग करेंगे। तो इसलिए समस्या को भी बाबा कहते हैं ना, खेल समझो। माया के बहाव में बहने जाना, आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया। माया एक तरफ खींचेंगी, आप उसके तरफ नहीं चले जाना, अपनी स्थिति से नीचे नहीं आना, वो पाठ पढ़ाने आती है, घबराना नहीं। और सबसे गुण उठाओ, किसी की कमजोरी नहीं देखो, किसी की कमजोरी देखेंगे ना तो अपने में आ जाएंगे। इसलिए दत्तात्रेय की तरफ हर एक से गुण उठाओ। समस्या को भी अपना गुरु समझो कि ये पाठ पढ़ाने आती है। और मम्मा कहती थी, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो अलबेलापन नहीं रहेगा, बहुत अटेंशन रहेगा। शुरू शुरू में जब ज्ञान में जब आए ऑस्ट्रेलिया वाले, तो क्या करते थे, स्पेशली ड्राइविंग करते समय कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बहुत अटेंशन रखते थे कि बाबा की याद रहे। ऐसे नहीं एक्सीडेंट में हम बाबा की याद बगैर शरीर छोड़ दें। और रेड लाइट आती थी तो खुश होते थे, चलो बाबा को याद करो, नहीं तो क्या होता है, धीरज नहीं रहती है, समझते हैं जल्दी लाइट बदले और हम आगे बढ़े। अभी कुछ भी हो जाए, एक भाई था अपने पॉकेट में मुरली के पॉइंट रखता, जैसे रेड लाइट आई मुरली के पॉइंट रिवाइव करता था। तो क्या है कि ज्ञान और योग में अपने को मस्त रखना है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं शरीर बीमार है, इलाज तो करना है, परंतु ऐसे नहीं सोचना कि बीमारी क्यों आई। बीमारी आएंगी तो उस समय अशरीरी अवस्था में रहकर अपने को आगे बढ़ाना है। और हॉस्पिटल को कहते हैं होली प्लेस, समझो। तो यहां हमारी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहो, स्वराज्य अधिकारी बनना है। मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। मन को जिधर उधर भटकने नहीं देना है। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप देना है। ऐसे नहीं कि आंख ने कुछ देखा और लुभाईमान हो जाए कि ये अच्छी बहुत चीज है, चलो हम खरीद लेवे। जेब में पैसा है खरीदते जाओ जो इच्छा हो, नहीं जरूरत है तो खरीदो, नहीं तो नहीं। क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है, इसलिए आंखों पर कंट्रोल हो, कानों पर कंट्रोल हो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। अपना चार्ट लिखना है कि सारे दिन में ज्ञान का क्या मनन मंथन किया, कितना योग रहा, और योग भी स्टेज कैसी रही। ऐसे नहीं नेमी नाद बनकर चलो उठकर बैठ तो गए पर झुटका खाते रहे, नहीं, अलर्ट होकर योग में बैठे। और सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, कितनी सेवा की, कितनों को सुख दिया, पुण्य कितना किया, सारा चार्ट रखो। और बाबा कहते हैं तीन बिंदु पक्का हूं, आत्मा, परमात्मा और फुल स्टॉप। व्यर्थ को फुल स्टॉप दे के पूरा करूं। और मन को ऑर्डर दो और उसी स्थिति में जाए। बाबा ने बीच में ये भी एक्सरसाइज दी थी, साकार दुनिया में से आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, ऑर्डर करो और चला जाए मन। पांच रूप का भी अभ्यास करो। और बुद्धि क्लीन क्लियर हो ताकि हम निर्णय कर सके ठीक। ये याद रखना है कि संस्कार हमारे आदि अनादि शुद्ध श्रेष्ठ और पावन है। पुराने संस्कारों के वश हम न होता, मर्जी व जन्म है, पुराने संस्कारों से मर चुके हैं। बाप से अति प्यार हो, बाप का सहारा लेते रहो, तो क्या होगा, न्यारा बन जाएंगे। एक भी कमजोरी ना हो, ऐसे नहीं कि कौन संपूर्ण बना है। नहीं, कई लोग क्या कहेंगे, कौन संपूर्ण बना है, कौन लक्ष्मी नारायण बना है, फलानी बहन देखो 30 साल से 40 साल से 50 साल से ज्ञान में, उसको भी गुस्सा आ जाता है, मुझे आ गया तो क्या बड़ी बात है, हम तो गृहस्थी है। ये नहीं, भाई बहनों को नहीं देखना है। भाई बहनों को देखेंगे तो किसी की कमजोरी देखेंगे तो उससे नफरत करेंगे, किसी के गुण देखेंगे तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सी मदर फादर नॉट ब्रदर सिस्टर। और अपने में एक भी कमजोरी होंगी ना तो क्या होगा, वो गेट खोल देंगे दूसरी कमजोरियों के लिए। इसलिए माया से सावधान रहना है। ऐसे नहीं कि हम दरवाजे बंद रखे, खिड़की खोल दे, माया तो क्या है, दरवाजे खिड़की भी बंद होंगे ना, चिमनी से आ जाएंगी, सुएज से आ जाएंगी, कहां से भी आ जाएंगी। जरा भी अटेंशन कम रहा, माया अटैक करेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा तीव्र रहे जो बाप समान जल्दी बन जाए। ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाबा तो शुरू से कहते रहे हैं, एक साल ही है, 36 से कहा एक साल है, उनको कहा अभी दूसरी दिवाली नहीं आएंगी। तो कई लोग कहते हैं बाबा तो कहते रहते हैं बिना सामने खड़ा है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पर अभी तो रिहर्सल होने लगी है। ये कोविड ने 40 लाख लोगों का सारे विश्व में जान लिया है। तो और देखो, कभी यूरोप में बाढ़ नहीं आती थी, इस बार तो जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लंदन बाढ़ आई, नेचुरल कैलेमिटी। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा और लोगों में डिप्रेशन हो जाता, कितने लोग आत्मघात करते हैं, खाना नहीं, जिम्मेवारी है, कर्जा बढ़ गया है, तो लोग है सुसाइड कर लेते हैं, तो सुसाइड का परसेंटेज बढ़ता गया है। तो इसलिए बाबा का जो बच्चा बना है उनको कभी डिप्रेशन नहीं होना, खुशी खुशी रहें। आज भी बाबा ने कहा खुशी नशा, उमंग, उत्साह कायम रहे, क्योंकि हम कौन हैं। दादी जानकी का ये मंत्र था, तीन बारी ओम शांति बोलते थे, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, किसकी बच्ची हूँ, किसकी स्टूडेंट हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ। नशा रहेगा कि मैं कल जाकर विश्व का मालिक बनूंगी। तो बाबा कहते हैं परिवार में भल रहो, परिवार को छोड़ना नहीं है। शुरू में तो भट्टी बननी थी तो कईयों ने घर बार छोड़ा है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। कभी ये नहीं कहो कि मेरा क्या भाग्य। बाबा ने हमको जल्दी नहीं ज्ञान में लाया। देखो कई लोग तो 60-80 साल से ज्ञान में, कितने भाग्यशाली, और मैं अभी अभी आई। परंतु जो अभी अभी आए हैं उनको ज्ञान डिफाइन मिला है, योग की भी नई नई विधि सीखने मिली है, तो इसलिए जो भाग्य है, जो मिला है वो देखो, जो नहीं मिला है वो नहीं देखो। नेगेटिव नहीं बनो, पॉजिटिव रहो। और जीवन में बैलेंस रखो। आप लोग परिवार में हैं, बैलेंस रखो, लव और लॉ का। ब्रह्मा बाबा ने बैलेंस रखा था, जितना प्यार था उतना बाबा डिसिप्लिन चाहता था कि सब श्रीमत अनुसार चले। खुद भी चलता था औरों को भी चलाता था। प्यारा और न्यारा, उसका भी बैलेंस। सबसे प्यार हो पर किसी से मोह ना हो। ब्रह्मा बाबा के साथ यज्ञ में उसका सारा परिवार था, और हमारी कई दादियां माँ बेटी साथ में रहती थी। पर कभी ऐसा नहीं लगता था कि ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता दादी या ब्रिजेंद्रा दादी को ज्यादा प्यार किया हो और अन्य दादियों से कम प्यार हो। कोई भी समझ नहीं सकता था कि बाबा कोई अपने लौकिक परिवार के लिए पक्षपात है। अव्यक्त हुए तो भी प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी को सारा कारोबार सौंपा। क्योंकि निर्मल शांता बेटी थी वो भी कम नहीं थी, ब्रिजेंद्रा दादी बहू थी वो भी काफी पक्की थी, पर उनको नहीं, दीदी दादी को दिया। और नष्ट महता ऐसे थे, जब दादा नारायण ने यज्ञ छोड़ा, उसका ज्योति के साथ प्यार हो गया था, सोचा चलो शादी करेंगे और कमाई करेंगे, बाबा ने उसको 5 रुपया दिया, अब उसे अहमदाबाद की टिकट, जाओ तुम अपना भविष्य बनाओ। कितना नष्ट मौत। उसके बड़े बेटे ने छोड़ा यज्ञ, बेटियों ने छोड़ा, जिसने छोड़ा जाने दिया, तो इसलिए पूरा नष्ट हुआ थे। फिर बैलेंस ऑफ इकोनॉमी और उदारता, ब्रह्मा बाबा इकोनॉमिकल बहुत थे। जब भी हम बंबई से दिल्ली से कोई फल लाता था, बाबा चेक करता था कि ये प्राइस कितनी दी है और क्वालिटी क्या है, क्योंकि बाबा जानता था कि किसकी प्राइस क्या होती है बाजार में। तो देखता था और देखता था कि इसने ज्यादा प्राइस दी है, तो कहता था बुद्धू और उदार दिल भी ऐसे थे। आप देखते हैं यज्ञ में माउंट आबू में जब आए, कितनी ठंडी थी, अभी तक उतनी ठंडी नहीं है क्योंकि मकान बहुत बच गए हैं। तो जब वो थे, देखते थे गरीब लेबरर है और उनके पास गरम कपड़े नहीं हैं, तो फौरन लच्छू दादी को कहते थे, क्योंकि लच्छू दादी ब्राह्मणी थी ना, इनको गरम कपड़े दो। और आज भी यज्ञ में सिस्टम है, हर सर्दी की सीजन में हर लेबर को एक ब्लैंकेट मिलता है। तो उदार भी थे और इकोनॉमिकल भी थे, स्वीट भी थे, स्ट्रिक्ट भी थे। क्या होता था, एक बार सब दादियों को होली मनाने के लिए मधुबन बुलाया, और जानकी दादी आते ही दूसरे दिन बाबा कहते हैं कॉन्फ्रेंस है, हिंदू कॉन्फ्रेंस, जाओ वहां भाषण करना। तो दादी ने जरा नाराज की, बताया बाबा हम तो होली मना रहे हैं, हमको आप भेज देते हो। तो बाबा स्ट्रिक्ट हो गए और जो भी आज्ञा पर नहीं मानते थे, साल तक पत्र नहीं लिखते थे, क्योंकि बाबा के पत्र के तो बहुत बच्चे प्यासे होते थे ना, तो बाबा का पत्र नहीं आता है तो कितना दुख होता था। तो स्वीट भी थे। फिर दादी ने माँ से कहा, उन्होंने कहा नहीं, बाबा की आज्ञा तो जरूर माननी है, क्योंकि मम्मा तो जी हजूर करके बाबा की आज्ञा बहुत स्ट्रिक्टली पालन करती थी। तो मम्मा ने मना कर भेज दिया, और कई बार कईयों को कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि मैं कॉन्फ्रेंस में इतने धर्म गुरुओं के सामने कैसे बोलूंगी। तो मम्मा ने कहा नहीं, बाबा तुम्हारी विशेषता जानता है, तुम अपनी विशेषता को नहीं जानती हो, जाओ हो जाएगा। तो मम्मा उन्हों को प्रोत्साहित करती थी और चले जाती थी दादियां। और बाबा का सिंपल भी था, रॉयल भी था। उन्होंने यज्ञ के हेड बनने के बाद भी अपना ड्रेस नहीं बदला, सिंपल और रॉयल। जैसे आज भी आप देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां, सिंपल सफेद कपड़े पर रॉयल, सफेद भी एकदम साफ कपड़े। दादी जब ट्रेवल करती थी तो कभी कभी कोई पूछते थे, आप अपने कपड़े कहाँ धुलवाते हो, इतने सफेद है पर साफ है। दादी कहती थी, मैं पेरिस में धुलवाती हूँ। हंसती थी जानकी दादी। निरंकारी और नशा, बैलेंस, कितना निरंकारी। कहता था मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और नमस्ते करते थे हम बच्चों को, और हम बच्चों को कभी नहीं कहते थे कि पांव छुओ या साष्टांग दंडवत प्रणाम करो या कुछ नहीं, खुद नमस्ते करते थे। पर नशा था कि मैं बाबा का सिकी लधा बच्चा हूँ, अनन्य बच्चा हूँ, लाडला बच्चा हूँ, कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। तो जब भी ड्रेस पहनता था तो कहता था, कल जाकर मैं ये कृष्ण का ड्रेस पहनूंगा। नशा, कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा, मिचनू कृष्ण बनूंगा। तो बाबा का परिवार लौकिक परिवार साथ था, परंतु नष्टो मोह, प्यारा और प्यारा। और बाबा हमेशा अपने ऊपर बहुत ध्यान रखता था। जब भी समझो अपना चक्कर लगाता था, क्योंकि बाबा की दिनचर्या सब फिक्स होती थी, चक्कर लगाता था। कई बार है मुरली के पहले हरेक का कमरा देखता था कि कमरा साफ करके क्लास में गए हैं या नहीं, क्योंकि कई बार नहीं, जल्दी जल्दी में चद्दर ऐसे ही फेंक के जाते हैं या कपड़े ऐसे ही फेंक के जाते हैं। नहीं, सफाई उनको बहुत पसंद थी। और पंक्चुअल, टाइम पर क्लास में जाना। और उसके ये हमेशा ये रहती थी कि मेरे पहले स्टूडेंट क्लास में आ जाए, टीचर के पहले स्टूडेंट को क्लास में आना है। तो जब ब्रह्मा बाबा होते थे, क्लास के 5 मिनट पहले आप देखेंगे, तब ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते भागते पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि गद्दी पर बैठे हैं तो हम देख सकते हैं कौन देरी से आते हैं। तो टीचर तो देख सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। और बाबा ये नहीं पसंद करते थे कि स्टूडेंट देरी से आए, ये टीचर का रिगार्ड नहीं है और स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं है देरी से क्लास में आए। पंक्चुअल, खुद भी पंक्चुअल था और चाहता था सभी पंक्चुअल रहे। और उन दिनों में सिर्फ हिस्ट्री हॉल था, एक भी सोफा नहीं, सभी को पट पर बैठता था और किसी को दीवार का सहारा नहीं लेना है। कहते हैं आप बूढ़े नहीं हो गए हो, किसी को सहारा लेने की दरकार नहीं। तो स्ट्रिक्ट टीचर भी था, और प्यारा बाप भी था सबको, बच्चे बच्चे, चाहे लेबर था चाहे चिड़िया थी। अंत में आपको याद आऊंगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में बाबा झोपड़ी में बैठता था और बाबा का टाइम फिक्स था। तो क्या है, वो चिड़िया आती थी तो बाबा लच्छू को कहता था, लच्छू इस बच्ची को, बच्ची लच्छू को, बच्ची इस बच्ची को टोली दो। तो रोज लच्छू दादी उसको टोली देती थी और रोज वो चिड़िया आती थी। तो समझो बाबा के स्नेह के कारण सभी ने इसने प्यार, शक्ति, शांति का अनुभव किया। तो उनके लिए सरेंडर होना मुश्किल नहीं था, सरेंडर हो गए। तो इस रीत से हमें भी ऐसा बेहद का स्नेही बनना है जो सब बाबा की तरफ आकर्षित, तो हमारे तरफ नहीं, मेरा पन्ना हो, उसमें रूहानियत हो, जो हमारे से उनका लगाव ना हो, स्नेही रहे। तो इस रीति से ब्रह्मा बाबा की जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, मैं कहूंगी जरूर पढ़ें, क्योंकि दादियों की भी हिस्ट्री है, ब्रह्मा बाबा की भी हिस्ट्री है। वो पढ़ने से हमें ख्याल आता है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन बनाया, हमारे सामने एग्जाम्पल बने। तो इस रीत से संपन्न बनने का लक्ष्य रखकर हमें संपन्न जरूर बनना है। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और बाद में आपको 15 मिनट की रिसेस है, फिर हारमोनी हॉल में 1 घंटा 1.5 घंटा जो क्लास है ऊपर है, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ।